શ્રી ભદ્રાજચંદ્ર પત્રાંક 213 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 41.
શ્રી ભદ્રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 213. इस पत्र में सत्पुरुष के विषय में कोई असाधारण रूप से कृपालु देव ने अपनी कलम चलाई है। सारे ग्रंथ में सत्पुरुष का महत्व तो गाया ही है, किंतु इस पत्र में कोई बहुत विशेष रूप से इस बात को रखी है। अंदाज लगता है ब्रैकेट में दिया है, इसलिए पत्र सुभाग भाई पर। पुराण पुरुष को नमो नमः। पुराण पुरुष मैंने अपना आत्मा है, वो अनादि से है, इसलिए बहुत पुराना है। और जो भी पुराणों में कथा है वो आत्मा की ही कथा है, इसलिए अपना मूल स्वरूप जो पुराण पुरुष है उसको नमस्कार करके पत्र का प्रारंभ करते हैं। यह लोक त्रिविध ताप से आकुल व्याकुल है। ज्ञानी की दृष्टि में सारे दुनिया के जीव कैसे हैं कि दुखी ही दुखी हैं। ये लोक त्रिविध ताप से, त्रिविध मैंने तीन प्रकार के, आधि व्याधि उपाधि से, किसी को व्याधि है, किसी को उपाधि है, किसी को आधि है, सब आकुल व्याकुल मैंने सब दुखी ही दुखी है, किसी को वो सुखी देखते नहीं है। व्याधि तो मैंने जो रोग है, पीड़ा है, बाधा है, आदि मैंने कोई अचानक आ पड़ती है आपत्ति, उसको आदि कहते हैं। और कहीं प्रकार की जो वर्तमान संयोग की परिस्थिति को बढ़ाने के लिए, उसको संभालने के लिए जो उपाधि करते हैं लोग, उसको क्या करते हैं, आज को तो कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन कल की चिंता सारी दुनिया के जीव को गले पड़ी है। तो वर्तमान परिस्थिति को भी वो आराम चैन से भोग सकते हैं नहीं है, तो आदि व्याधि उपाधि से सब दुखी ही दुखी नजर आते हैं ज्ञानी को। मृग तृष्णा के जल को लेने के लिए दौड़कर प्यास बुझाना चाहता है, ऐसे दीन है। मृग तृष्णा के जल को लेने के लिए दौड़ते हैं, और जल नहीं है वहां, तो कभी जल मिलने वाला नहीं है, और दौड़ दौड़ के जैसे मर जाते हैं हिरण, वैसे ही लोग दौड़ लगाते लगाते आयुष पूरे कर लेते हैं, कुछ हाथ में नहीं आता। और इस प्यास बुझाना चाहने से दीनता बहुत आती है, इतने दीन हो जाते हैं, पामर हो जाते हैं। उनमें उपाधि में जिसको टेंशन आता है उसको पता चलता है कि वो कितने दीन है, बहुत दीन हो जाते हैं, सब कुछ होने पर भी दीनता का अनुभव करते हैं, अरे क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, कुछ हुआ ही नहीं आत्मा को, तो हो सकता भी नहीं है। विचित्र बात वो है कि गिनती सब गिनती नहीं रहती है, जैसे सामान्य आदमी को 10 लाख मिल जाए तो उसको लगता है, 1 करोड़ मिल जाए तो लगता है कि हमको बहुत मिल गया है, और एक अरबपति को 10 करोड़ भी रह जाता है इसकी पाती में, 90 करोड़ चला जाता है तो उसको लगता है कि मैं मर गया, जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा, उसको ऐसा लगता है। वो संपत्ति तो इससे 100 गुनी या 10 गुनी होती है, तो भी उसको मरने का भाव आता है, तो गिनती का तो कोई हिसाब ही नहीं रहा, अमाउंट तो जो है सो है, लेकिन उल्टी सुलटी परिणाम के परिस्थिति बनती है, तो एक को उसी अमाउंट में हर्ष होता है, दूसरों को पूरा पूरा दुख होता है। यही कारण है कि इसकी जो दौड़ है, इसकी जो अपेक्षा है, उससे वो दुखी है, बहुत दीन है। अज्ञान के कारण स्वरूप का विस्मरण हो जाने से जीव को भयंकर परिभ्रमण प्राप्त हुआ है। क्यों जन्म मरण करता है, क्यों इतना दुखी होता है, कि अपना स्वरूप को भूल जाने से, यानी अपना मूल स्वरूप को नहीं जानना, मूल स्वरूप को नहीं जान करके दूसरी कल्पना अपने विषय में कर लेना, मैं फलाना फलाना हूं, ऐसा जो अज्ञान है यानी विपरीत ज्ञान है, ये जन्म मरण का कारण है। और ये जन्म मरण वो भयंकर चीज है, भयंकर दुखदाई है, बहुत भयंकर है। जीव भयंकर परिभ्रमण को प्राप्त हुआ है, वह समय समय पर अतुल खेद, ज्वरादि रोग, मरणादि भय और वियोग आदि दुखों का अनुभव करता है। अनेक प्रकार के जो दुख होते हैं, जो खेद होते हैं, द्वेष होता है, रोग होता है, मरण का भय होता है, इष्ट वियोग होता है, अनिष्ट संयोग होता है, अनेक प्रकार से दुखी दुखी होता रहता है, दुखों का ही अनुभव करता रहता है। ऐसे अशरण जगत के लिए एक सत्पुरुष ही शरण है। ऐसी परिस्थिति में कोई शरण है तो एक सत्पुरुष ही शरण है। अगर इसके सानिध्य में गया, इसके चरण में गया, तो ये सभी दुखों से बच जाता है। सत्पुरुष की वाणी के बिना इस ताप और तृषा को दूसरा कोई मिटा नहीं सकता, ऐसा निश्चय है। सत्पुरुष की वाणी के बिना शांति भी मिलने वाली नहीं है। उतना जो तप्त हुआ है जीव दुख से, उसमें कोई शांति मिल सकती है तो सत्पुरुष की वाणी से मिल सकती है। जगत में शांति मिलने का भी दूसरा कोई निमित्त नहीं है, कोई कारण नहीं है, ऐसा निश्चय है। मैंने ऐसा हमारा अनुभव से ये निश्चय हुआ है। इसलिए बारंबार उस सत्पुरुष के चरणों का हम ध्यान करते हैं। देखो क्या कहते हैं कि ऐसे सत्पुरुष जगत के जीवों को शांति का कारण होने से हम खुद ही ऐसे सत्पुरुष के चरणों का ध्यान करते हैं, सत्पुरुष होकर के सत्पुरुष के चरणों का ध्यान करते हैं। देखो कितनी महिमा है, स्वयं को कितनी महिमा है। जो भी जगत में सत्पुरुष हो, जो भी ज्ञानी पुरुष हो, जगत के जीवों को एक आत्मिक शांति का कारण होने से, यानी अशांति मिटाने का एक बहुत मजबूत कारण होने से और एकमात्र कारण होने से, कहते हैं कि हम ही उसी चरणों का ध्यान करते हैं। मात्र सत्पुरुष ही शरण है, क्योंकि अनंत सिद्ध होते हैं। अनंत सिद्ध होते हैं तो सत्पुरुष तो अनंत हो गए, जब तो अनंत सिद्ध हुए ना। हमारे यहाँ दूसरे मत के जैसे नहीं कि एक ही ईश्वर होता है, ऐसा तो नहीं है। सिद्ध भी अनंत होते हैं, अरिहंत भी अनेक होते हैं। जैसे एक समोसरण में तीर्थंकर एक होते हैं, केवली लाखों होते हैं, इससे ज्यादा मुनिराज होते हैं, गुरु होते हैं, इससे ज्यादा सत्पुरुष होते हैं, इससे ज्यादा मिथ्या दृष्टि लोग होते हैं, एक ही समुद्रण। जैसे जैसे ऊपर जाइए संख्या कम होती जाती है, जैसे जगत में लोहा ज्यादा है सोना कम है, लोहे को टन में गाला जाता है जबकि सोना को सोने को तोले में गाला जाता है, कितने तोले तोला सोना गाला है, और हीरों को कैरेट में नाप किया जाता है, वो तो ग्राम में भी नहीं है, तोले में तो नहीं है, ग्राम में भी नहीं है, तो जितना चीज ऊंची है उतनी इसकी प्राप्ति भी कम है। ऐसे मिथ्या दृष्टि की संख्या अनंतानंत है, सम्यक दृष्टि संख्यात होते हैं, असंख्य भी नहीं होते हैं, मनुष्य असंख्यात होते हैं, उसमें सम्यक दृष्टि संख्यात होते हैं। चारे गति का वो तो असंख्यात सम्यक दृष्टि हो सकता है, तिरंज वगैरह गिन करके लेते हैं, पर उसमें मुनिराज है ये तो बहुत कम होते हैं, उसमें केवल इससे भी कम होते हैं। तो एक सत्पुरुष का कोई सवाल नहीं होता है, एक का अर्थ यहाँ मात्र लेना है। नहीं, वो भवान अहिया तो मात्र एम कहूँ से फिर से पढ़े। समस्त प्रकार के दुखों का अनुभव जगत के जीव करते हैं, ऐसे अशरण जगत के लिए एक सत्पुरुष ही शरण, एक ही शरण है। एक शब्द शरण को लागू पड़ता है, सत्पुरुष को नहीं लागू पड़ता है। एक जो संख्या लगाई है वो शरण के लिए लगाई है, सत्पुरुष के लिए एक संख्या नहीं लगाई है। हाँ, एक ही शरण है, दूसरा शरण नहीं है, कहने का मतलब ये है, दूसरा कोई शरण नहीं है जगत में, न मकान शरण है, न पैसे शरण है, न सगे संबंधी शरण है, न मित्रादि कोई शरण है, न कोई समाज शरण है, कोई शरण नहीं है, एक सत्पुरुष ही शरण है, ऐसा कहना। हाँ, सत्पुरुष को लिया है, ये समझने की चीज है। ये समझने की चीज है, क्या प्रश्न उठाया है कि आत्मा को शरण क्यों नहीं कहा और सत्पुरुष को शरण कहा, कि सत्पुरुष बिना तो आत्मा मिलने वाली नहीं है, कहाँ से मिलेगी, आत्मा तो खुद ही है, आत्मा खुद ही है, आनंद सुख का भंडार भी इधर है, फिर भी तो भटकता है संसार जगत के सुख के लिए, संसार के सुख के लिए तो तड़पता है, भटकता है, यानी क्या क्या नहीं करता है, चोरी करता है तो सुख के लिए, खून करता है तो सुख के लिए, कतलखाना चलाता है तो सुख के लिए, कुछ भी करता है तो सुख के लिए, एक भी क्रिया ऐसी नहीं है कि वो सुख के लिए नहीं करता है, फिर भी सुख मिलता नहीं है, अंश मात्र नहीं मिलता है। तो आत्मा में सुख भरा है लेकिन आत्मा में से सुख मिलता नहीं है, तो आत्मा में सुख भरा है वो आत्मिक सुख की उपलब्धि कैसे हो, वो समझाने वाले सत्पुरुष हैं। इसलिए तो आत्मशुद्धि में क्या बोल क्या लिखा कि ते तो प्रभुए आपियो, कि हमारा आत्मा कोई दूसरा देता है क्या, हमारा आत्मा तो हमारे पास है ही, क्योंकि तो नहीं था, था ही नहीं तेरे पास तेरा आत्मा, तो ये तो प्रभु ये आपियो, तो प्रभु दिया है वो आत्मा, इसलिए मैं तो उसके चरण के अधीन वर्तता हूँ, दूसरा मुझे कोई भाव आता नहीं है। आत्मा आए तो इतने हूँ आत्मा मालिन था उसे हम न कीधु, ठीक और बात आत्मा दिया तो इसलिए ऐसा नहीं कहा कि मैं आत्मा में विलीन हो जाऊंगा, मैं तो सत्पुरुष के चरण के अधीन बरतूंगा, क्योंकि आत्मा तो उसने भी दिया है, तो मेरा ड्यूटी तो इसके चरण के अधीन बरतना, इतना ही मेरा ड्यूटी है, फिर इसमें सब आ जाएगा। इसके चरणाधीन बरतने से सिद्ध दशा तक पहुंचने का हो जाएगा, ऐसी बात। अब आगे कहते हैं कि यह संसार केवल असातामय है, कहीं साता भी नहीं है, असाता इतनी है कि किसी को कहीं थोड़ी भी शाता नहीं है। कभी किसी भी प्राणी को अल्प भी शाता है, वह भी सत्पुरुष का ही अनुग्रह है। देखो, थोड़ी शाता अगर किसी को होती है, किसी को होती है कि जो सत्पुरुष के चरण में आए उनको थोड़ी होती है, दूसरों को तो होती ही नहीं है। क्या दूसरों को तो होती ही नहीं है, क्योंकि उनको तो उतनी अग्नि जलती है भीतर में, इसका हिसाब किताब खुद को ही नहीं है। वो तो ज्ञानी जानते हैं अच्छी तरह के, अनंत दुख में मिथ्यात्व सहित जो जीव है अनंत दुख में हर समय दुखी हो रहा है, किसी को थोड़ी शाता आई है, ये सत्पुरुष की कृपा से आई है। कृपा माने क्या? कि जो योग्य जीव होता है, योग्यतावान होता है, उस पर सत्पुरुष की प्रसन्नता देखी जाती है, तो उसी को लोग कहते हैं कि इसकी इसके ऊपर कृपा है। वास्तव में कोई लेने देने का तो सवाल है नहीं, कोई किसी को लेता देता है वो तो प्रश्न ही नहीं है, मेरे कुछ लिया दिया जाता भी है, ये तो वस्तु स्थिति है ही नहीं, मर्यादा ही नहीं है वस्तु के स्वरूप में। लेकिन जो इस लाइन में आने के योग्य हो जाता है तो सत्पुरुष को भी चित्त प्रसन्न हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कि इसके पर इसकी कृपा वर्तती है। तो उनको शांति इसलिए है कि उसने जो संसार के भटकने का मार्ग है वो मार्ग बदलने के लिए उसकी तैयारी, इसकी योग्यता हो गई है, तो उसको कुछ अंश में शाता की प्राप्ति आती है, होती है, ये सत्पुरुष का ये अनुग्रह है। यानी सत्पुरुष के लक्ष्य से उसको ऐसा ऐसी योग्यता हुई है, इसलिए भी उसको इसकी इसकी प्रसादी मिली है या कृपा मिली है, ऐसा कहने में आता है। किसी भी प्रकार से पुण्य के बिना शाता की प्राप्ति नहीं होती, और इस पुण्य को भी सत्पुरुष के उपदेश के बिना किसी ने नहीं जाना है। प्राप्त तो कहां से किया होगा, जाना भी नहीं है। ये जो किसी भी प्रकार से पुण्य के बिना शाता की प्राप्ति तो नहीं होती, पाप के उदय में तो अशाता ही होती है, लेकिन पुण्य का स्वरूप क्या है? जो पुण्य के उदय में इससे ज्यादा बहुत पाप बंद हो जाए, इसको पुण्य क्या कहे? या जिस पुण्य के उदय में परिभ्रमण बढ़ जाए, इसको पुण्य भी क्या कहे? तो कुंदकुंद आचार्य ने पुण्य पाप अधिकार में ये बात लिखी है कि लोग ऐसे कहते हैं कि जो अशुभ है वो तो कुशील है, वो अशुभ है, और जो पुण्य है वो तो सुशील है, सत्कर्म बोलते हैं लोग इनको। लेकिन हमको ये प्रश्न होता है कि जो संसार में भटकावे, दाखिल कर दे, प्रवेश करा दे, उसको सुशील कैसे कहा जाए? प्रश्न उठाया है कि जो संसार के परिभ्रमण का कारण हो उसको हम सुशील नहीं कह सकते, वो कुशील ही है, सुशील है ही नहीं, ऐसा करके दोनों को एक पंक्ति में तत्व दृष्टि से रखा है। तत्व दृष्टि में दो भाग नहीं है शुभ अशुभ का, ऐसी बात है। तत्व दृष्टि रूप से दोनों एक खाते में खताने में आते हैं, इनके जो भेद है वो समझ में आते हैं, ये तीव्र कषाय है, वो मंद कषाय है, लेकिन जाति तो एक है, कषाय की जाति तो कोई अलग नहीं है। इसलिए पुण्य के उदय में किसी को साता की प्राप्ति पुण्य के उदय बिना तो नहीं होती, लेकिन इसका जो स्वरूप है वो सत्पुरुष के उपदेश बिना किसी ने नहीं जाना, उल्टा जाना है। वो पुण्य करने लायक मान करके, कम से कम पुण्यानि बुद्धि पुण्य करने लायक ऐसा मान करके वो भटक जाता है। क्योंकि दो रास्ता विरुद्ध है। जो मार्ग पुण्य का है वो आत्मा का पवित्रता का नहीं है, क्योंकि कषाय रूप अपवित्र भाव है उसमें। पुण्यानुबंधी पुण्य में भी अकषाय भाव नहीं है, कषाय भाव है और वो अपवित्र है। दोनों का रास्ता ही अलग है और विरुद्ध है। अलग है उतना ही नहीं है, विरुद्ध है, बगल बगल में भी नहीं चलता है, विरुद्ध चलता है, ऐसी बात है। नहीं बनता है, ऐसा तो नहीं बनता है। लेकिन कोई ऐसा कहते हैं कि देखो इसके पास संपत्ति आई तो सारी संपत्ति उसने सन्मार्ग में लगा दी, तो हो सकता है कि पुण्यानुबंधी पुण्य है ऐसा करके। लेकिन ऐसा भी सत्पुरुष के उपदेश से होता है, स्वयं के उपदेश से ऐसा नहीं होता है। कोई मिथ्या दृष्टि पुण्यानुबंधी पुण्य जैसा कोई परिणाम करता है तो वो भी सत्पुरुष के उपदेश से करता है। सत्पुरुष के उपदेश बिना ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य का प्रकार नहीं बनता है। तो जो उसका आश्रित है उनको वो बनता है, एक ज्ञानी को बनता है और ज्ञानी के आश्रित को बनता है, दूसरे को नहीं बनता है। क्योंकि दूसरे को अहम भाव आ जाएगा, सन्मार्ग में लगाएगा तो भी वो उसको अहम भाव आएगा। हम तो उतर गए वो तीर्थ स्थान में जाते हैं ना, सोनागिर है वो, उधर संवेद शिखर है, तो वहां तो एक एक सीढ़ी पे तख्ती लगी हुई है। हमको लगा कि ये दिगंबर मार्ग है ही नहीं, दिगंबर मार्ग में तो ये पुण्य करके अहम भाव करने का कहीं प्रश्न ही नहीं है, ये तो पापानुबंधी पुण्य हो जाता है। पुण्यानुबंधी पुण्य भी नहीं रहता है, पापानुबंधी पुण्य ये हो जाता है। कहां तक की लगाने की बात कहां से आ गई इन लोगों में? और जगह तो सब ऐसा ही है, यहां कहां से ये कैसे आ गई है? तो क्या कि बिना सत्पुरुष जब समाज चलती है तो चाहे वो तीर्थंकर के अनुयायी लोग हैं वो भी भटक जाते हैं, ऐसा होता है।
तो ये दृष्टि
हाँ, उसमें क्या है कि उसका अपना जो शरीर का जो नाम है, आत्मा को तो नाम नहीं है, इस शरीर का नाम है तो लिखो मेरा नाम, तो मेरा तो है नहीं। हम भाव किया शरीर में, पाप मिथ्यात्व का पाप बांधा। कैसा पाप बांधा? सबसे बड़ा, सप्तव्यसन से ज्यादा जो है, अधिक है, ऐसा पाप को बांधा। वहां दान देने के परिणाम तो दान देने के किए, और दान देने के परिणाम करने पर भी उसने पाप तो बांधा। जैसे पाप का अनुबंध हुआ, वो पाप जिस पुण्य के उदय में पाप का अनुबंध करता है, जैसे भोगो पुण्य भोगता है तो भोगो भोग में भी पाप बंध होता है, तो कोई सन्मार्ग में धर्म में उसका प्रयोग करता है कि चलो हमको पास खाने का तो कोई तोड़ तोड़ा नहीं है, लेकिन आज उपवास करना है हमको। कुछ शुभ भाव आया, वे पचकण ले लिया महाराज के पास जाकर, आज जोड़ के आज खाना नहीं खाएंगे, उपवास करना है। लेकिन अहम भाव हुआ कि हमने तपश्चर्या की, इससे कोई पुण्य बंधेगा। भले एक दिन खुराक छोड़ दी है लेकिन पुण्य अच्छा से अच्छा पुण्य बंधेगा, इसका फल अच्छा आएगा हमको भविष्य में। ये सब प्रकार की अपेक्षाएं रहती हैं। सत्पुरुष के उपदेश बिना ऐसे कहीं न कहीं प्रकार के संसार के अपेक्षा के साथ ही भाव होता है, पुण्य बंद करता है तो पाप ज्यादा होता है, और ये मिथ्यात्व सहित का पाप होता है। तो ऐसे पुण्य करना जो है वो सत्पुरुष के उपदेश में नहीं है। सही रूप में किसको पुण्य आता है, ज्ञानी को कैसे आता है? कि उनको तो अपनी जो प्रारब्ध से संयोग में जो संपत्ति है, जो उसके कहलाने वाली है, कहलाई जाती है कि इसकी संपत्ति है, वो तो नहीं मानता है कि मेरी है। लेकिन जो उसकी लोक दृष्टि में कहलाई जाती है वो अपनी नहीं जानता है, उस पर उसका स्वामित्व नहीं है, मोह नहीं है, तो उसको होता है कि भाई ये सन्मार्ग में लग जाए तो अच्छी बात है, हमारे तो इसका कोई उपयोग नहीं है। हम तो इसको भोगने में सुख मानते नहीं है। तो यदि ये सन्मार्ग में लगता है, कोई भगवान का मार्ग का प्रभाव में लगता है, तो ये बढ़िया बात है। इससे इससे अच्छा उपयोग कौन सा ऐसा हो इसका हो सकता है। तो उनको न उसमें अहमभाव आता है कि मेरी संपत्ति का उपयोग हुआ है, ऐसा नहीं आता है। गुप्तदान अच्छा है, गुप्तदान सबसे अच्छा है, और प्राय गुप्तदान करते भी हैं लोग, तो वो तो अच्छी बात है। दूसरों को प्रेरणा मिले इसलिए हमारा नाम ही क्यों क्यों सिलेक्ट करें। सवाल तो एक नाम तो किसी का भी हो सकता है, ये हमारे विषय में क्यों आता है, थोड़ा सूक्ष्मता से विचार करना पड़ेगा कि हमको इसमें हमारा नाम की बात आती है या दूसरे का नाम की बात आती है, किसकी बात आती है। हमारा नाम नहीं आना चाहिए, बात खत्म। तो दूसरे तो बहुत हैं जो नाम देने वाले हैं, नाम नहीं देंगे तो उसको दुख होगा। हमने पैसे दिए तो नाम क्यों हमारा नहीं छपा, क्यों नहीं लिखा गया, ये बता जाए। ज्यादा तो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, हाँ वो भी इतना तो आता ही, इतना तो आता है, लेकिन मेरा नाम आना चाहिए उसमें तो अवश्य पापबंध है ही है। इसलिए पुण्य को भी सत्पुरुष के उपदेश के बिना किसी ने नहीं जाना। क्यों? कि ज्ञानी के बिना पुण्य की उपादेयता अज्ञानतावश आए बिना रहेगी नहीं। ये जीव तत्व ही नहीं है क्या? पुण्य है, अगर दो ही तत्व जगत में गिने जाए तो अजीव तत्व में जाता है, जीव तत्व में नहीं जाता है, स्वरूप भूत नहीं होने से। सिद्ध भगवान के पास कितना पुण्य है, सिद्ध भगवान के पास कितना पुण्य है, तो निष्कर्म अवस्था में है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और हमारा स्वरूप कैसा है? कि जैसा सिद्ध भगवान है वैसा हमारा स्वरूप है, फिर हमें पुण्य से क्यों लगाव है? ये हमारी विपरीतता है। क्या कि ये पुराणुबुद्धि पुण्य तो एक बाना है, पुण्य को पकड़ने का एक बाना मिलता है जीव को, क्योंकि पुण्य के भी प्रकार बहुत होते हैं। उसमें वो अच्छा है, वो अच्छा है तो तुम्हारा सिद्ध समान आत्मा अच्छा नहीं रहता है, ये बुरा हो जाता है, वो ख्याल में नहीं रहता है अज्ञानता के वश। और ये अपने जैन संप्रदाय में ये बात चलती है, लेकिन वो तत्व दृष्टि में तो ये तत्व की भूल हो जाती है। नौ तत्व का प्रतिपादन की संकल्पना जैन दर्शन में सम्यक दर्शन के अनुसंधान में क्यों है? नौ तत्व का जिसको भूतार्थ आश्रित ज्ञान होता है उसी को ही कुंदकुंद आचार्य समय सार के 13वीं गाथा में सम्यक दर्शन बोलते हैं। भूतार्थ आश्रित नौ तत्वों का ज्ञान जीव जीव अस्त्रबंध संबंध विराबंध मोक्ष सम्यक तो है, ऐसे करके गाथा है 13 नंबर की। तो ये नौ तत्व की जो संकल्पना है उसका अनुसंधान सम्यक दर्शन के साथ क्यों? क्या करना? उपाधेय उसमें उपाधेय का उसमें मुख्य दृष्टिकोण है, इसके पीछे कौन सा दृष्टिकोण है? कि कुछ तत्व हे है, कुछ तत्व उपादेय है। तो जीव तत्व उपादेय है आश्रय करने से, और प्राप्त करने से समर निद्रा मोक्ष है वो उपलब्ध होने के लिए उपादेय है। उपादेयता दो प्रकार की है, एक नहीं उपलब्ध है उसको उपलब्ध करना है, और जो प्राप्त है अनादि से उसका आश्रय करना है। तो उसकी उपादेयता दो प्रकार से आ गई, तो ये 4 उपादेय होते हैं, बाकी के सब हे में जाते हैं, तीसरा खाता नहीं है वहां, एक जमा है एक उधार है, तीसरा खाता वही खाता में नहीं होता, दोनों दो ही साइड होती है, ये उधार के साइड में जाता है, ये दवा के साइड में रहता है, बस वो संकल्पना है। ऐसी संकल्पना अन्य दर्शन में नहीं है। तो नव तत्व की बात ऐसी है। इसलिए सत्पुरुष के उपदेश के बिना किसी ने पुण्य का स्वरूप भी नहीं जाना है। और आत्मसिद्धि में तो आता ही है, तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। अशुभ को छेदते, पुण्य को पालन करते मोक्ष स्वभाव उपजता है, ऐसा ऐसी बात नहीं आई। तो ध्यान जाना चाहिए हमारा कि बात तो आती है, जो समय सारादि परमागम में बात आती है, वो कृपालु देव के वचन में वो बात आती है। तो हमको वहाँ को उसका कोऑर्डिनेशन तो करना चाहिए, मिलान तो करना चाहिए। बहुत काल और आत्मसिद्धि में तो आता ही है, तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। अशुभ को छेदते, पुण्य को पालन करते मोक्ष स्वभाव उपजता है, ऐसा ऐसी बात नहीं आई। तो ध्यान जाना चाहिए हमारा कि बात तो आती है, जो समय सारादि परमागम में बात आती है, वो कृपालु देव के वचन में वो बात आती है। तो हमको वहाँ को उसका कोऑर्डिनेशन तो करना चाहिए, मिलान तो करना चाहिए। बहुत काल पूर्व उपदिष्ट वह पुण्य रूढ़ि के अधीन होकर प्रवर्तित रहा है, इसलिए मानो वह ग्रंथादि से प्राप्त हुआ लगता है, परंतु उसका मूल एक सत्पुरुष ही है। क्या बहुत काल पूर्व उपदिष्ट, बहुत काल में मैंने ऋषभदेव भगवान से तो ये नौ तत्वों की बात आती है, उसमें पुण्य की बात आती है, और फिर उसमें से ग्रंथ रचे गए तीर्थंकर के बाद, तो लोगों को लगता है कि भाई हमारे में भी पुण्य की बात है। जितने भी संसार में धर्म है उसमें पाप को हेय बताया है, पुण्य को उपादेय बताया है। तीसरी बात कहीं भी जैन दर्शन को छोड़ करके नहीं है। तो हरेक को लगता है कि हमारे ग्रंथों में भी ये बात तो है, हमारे में भी वो बात है, लेकिन ये सब रूढ़िवश हो गया है। ऐसी बात जो हुई है वो रूढ़िवश हो गया है, इसलिए लगता है कि सबों के ग्रंथों में पुण्य की प्राप्ति तो होती है, परंतु उसका मूल एक सत्पुरुष ही है। अगर सही पुण्य होता है तो भी वो सत्पुरुष के अधीन ही होता है, बाकी तो पापानुबंधि पुण्य ही होता है। इसलिए हम ऐसा ही जानते हैं कि एक अंश साता से लेकर पूर्ण कामता तक की सर्व समाधि का कारण सत्पुरुष ही है। जगत में एक अंश साता जिस पुण्य से पुण्यानुबंधि पुण्य से होती है, यहां से लेकर किसी को मोक्ष होता है, तो ये इसका मूल कारण एक सत्पुरुष ही है। इसके अलावा किसी को ये लाभ होने वाला है नहीं, न कभी भूतकाल में किसी को हुआ है, न कोई आने वाले काल में किसी को होने वाला है। इतनी अधिक समर्थता होने पर भी, ऐसी महान समर्थता एक सत्पुरुष में होने पर भी, जिसे कुछ भी स्पृहा नहीं है, विशेषता इस बात की है कि सत्पुरुष निस्पृह ही होते हैं। जहां स्पृहा हुई वहां गड़बड़ वाली बात है, वहां कोई सत्पुरुष ऐसे कभी होते ही नहीं है। अंतरंग से वो निष्प्रह होते हैं, और अंतरंग से निष्प्रह होना यही इसकी गुप्त आचरणा है। वो बात और जगह भी उन्होंने दिखी है, क्योंकि वो निष्प्रता को भी दिखावा में नहीं ले आते, कल निष्प्र है हम, निष्प्र है हम, निष्प्र है हम, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। तो गुप्त रूप से वो अंतरंग से निष्प्र होते हैं। ऐसे समर्थ होने पर भी जिसे कुछ भी स्पृहा नहीं है, और ऐसा सामर्थ होने पर भी उन्मत्तता नहीं है, उन्मत्तता नहीं आती है, हाँ आकांक्षा है, स्पृहा माने आकांक्षा, आकांक्षा नहीं होती है। आकांक्षा होती है तो उसको अपना आत्मा का आधार नहीं मिला है, उसको ही होती है। जिसको अपना स्वरूप का अवलंबन लिया हुआ है उसको तो आकांक्षा होने का, क्योंकि सुख इधर से मिलता रहता है, उनको सुख आता है, उसमें एक प्रवाहित होकर के आता है। तो जो सुख के प्रवाह में है, बैठे हैं, उनको किसकी आकांक्षा हो, किस चीज की आकांक्षा हो, तो और जगह से तो सुख आएगा नहीं, कोई चीज में से तो सुख आता नहीं। स्पृहा नहीं, उन्मत्तता नहीं, उन्मत्तता मैंने स्वच्छंदता नहीं, यानी अपने सामर्थ्य को दिखाने के लिए ये कभी कोई चेष्टा करेंगे नहीं, सामर्थ्य दिखाने की चेष्टा नहीं करते, ये तो बाहर नहीं आ जाते, उसमें इतने बाहर वो आते नहीं। जैसे कोई ऐसे भी लोग होते हैं कि कितनी भी संपत्ति आ जाते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं कि कितनी आई है, मैंने सब तरह से पचा लेते हैं। वैसे अपना जो पद है वो तो सर्वोत्कृष्ट पद है, सर्वगुण संपन्न है, अनंत गुण संपन्न है, उसको अपनी दृष्टि में पचा लिया है जिसने, तो बाहर बताते नहीं कि हमारे पास कितनी संपत्ति है। इतना सर्वज्ञ स्वभाव की प्राप्ति हो गई, किसी को पता नहीं लगता है कि उसको क्या मिला है, इस तरह से वो बिल्कुल उन्मत्त नहीं होते, जो तो छलक जाते हैं उसको छलकते नहीं है। मैंने टॉप लेवल की मैच्योरिटी आ जाती है, कितने टॉप लेवल के, उतना मैच्योर हो जाता है कि इमैच्योर पोजीशन में जो कोई किसी को बात निकल जाती है ऐसे वो दोनों उसको नहीं निकलती है, बहुत सतर्क है, सावधान है अपने विषय में, इसलिए कहीं भी ऐसा नहीं होता कि वो उन्मत्तता में आकर के कुछ बात बोल दें। फिर भी पहचान जाता है, परमन शायद होता है, जिसको इस लाइन में आना होता है उसका ज्ञान की निर्मलता ऐसी ही होती है कि उसको उसकी पहचान हो जाती है। इसके पहले बुद्धि तो कितनी भी हो सकती है लेकिन निर्मलता नहीं होती तो पहचान नहीं हो सकती। ये पहचान होना ये सूक्ष्म विशेष का कारण नहीं है लेकिन निर्मलता की विशेषता का वो कारण है। इतनी बात है, उन्मत्तता नहीं है, अहंता नहीं है, इसका अहम भाव नहीं है कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया, अब मुझे कोई वांधा नहीं है, मेरे मुझे बंद नहीं होता है, ऐसा नहीं है। अहम भाव भी नहीं आता है, मैंने अभिमान नहीं होता है। वो देखो ना क्या लिखा गया कि उस सत्पुरुष के चरणों का हम ध्यान करते हैं, सत्पुरुष होकर के क्या लिखते हैं कि हम सत्पुरुष के चरणों का ध्यान करते हैं, अहंता आते नहीं। गुरु होते हुए शिष्य को नमस्कार कर लेते हैं, अहंता वाला वो नहीं कर सकता है। अहंता वाला तो अभी कोई अपराध कर लेता है, बोलो कि तुम क्षमा मांग लो तो क्षमा मांगने के लिए उसका परिणाम नहीं चलेंगे, अहंता ऐसी चीज है। पर उसमें तो मान अपमान की कल्पना खत्म हो जाती है। जब सम्यक दर्शन होता है तो सर्वात्म में समदृष्टि, ऐसी एक बात हो गई, तो फिर मान अपमान का जो कल्पना है वो तो इनकी नजर में कल्पना है, लोगों की नजर में कुछ भी हो, लेकिन उनकी नजर में तो वो मात्र कल्पना ही कल्पना है। तो उस कल्पना उसको छूट गई, कल्पना रही नहीं, तो उसका अहम भाव नहीं होता है। मैं बड़ा हूँ, दूसरे से ऊंचा हूँ, बड़ा हूँ, वो बात उनको उस प्रकार की कल्पना रहती नहीं है। सुविचारणा में हाँ ऐसे परिणाम चलने चाहिए सत्पुरुष की पहचान के, किस प्रकार के परिणाम सही है, किस प्रकार के सही नहीं है, कौन से हितकारक परिणाम है, कौन से अहितकारक परिणाम है। सुविचारणा का केंद्र स्थान वो है कि मेरे हित की बात कितनी, मेरे अहित की बात कितनी है। बस दो का विभाग कर सकता हो, दो का विवेक जो कर सकता है, उसी को हम सो विचारणा कह सकते हैं। अगर वो बात नहीं है तो सो विचारणा, क्योंकि उसमें तो अहित वाले परिणाम को सही माना जाएगा, ये बात हो जाएगी, तो सो विचारणा कहाँ की रही। अहंता नहीं है, गर्व भी नहीं है, गौरव भी नहीं है। उसका अहंता तक का ये तारतम्यता, अलग अलग तारतम्यता के परिणाम होते हैं, जिसमें गर्व आता है, गौरव आता है। ऐसे आश्चर्य की प्रतिमा रूप सत्पुरुष को हम पुनः पुनः नाम रूप से स्मरण करते हैं। हम तो किसी का नाम लेके भी स्मरण करेंगे, नाम रूप से मैंने क्या कि नाम लेकर के स्मरण करना है, जैसे हम कृपालु देव का नाम लेते हैं, तो नाम रूप से भी स्मरण करते हैं ऐसे सत्पुरुष को। कैसे बताएं उनको, आश्चर्य की प्रतिमा बताई है उसको कि क्या बात है, आश्चर्य लगता है कि जगत में ऐसे भी होते हैं जिसके पीछे सारी दुनिया दौड़ती है। वहां से उसने अपना जो है मुख फेर लिया है, उसको पीठ दे दी है कि हम तो हमारा रास्ता अलग हो गया है, जगत जब चलता है उस रास्ते पे हम नहीं चलते हैं, हमारा रास्ता अलग है। और जगत में रहते हुए भी वो तो अभी कहेंगे क्या आश्चर्य क्यों है, उसको आश्चर्य की प्रतिमा क्यों कहना, ये तो भी कहेंगे किस कारण से है, बहुत सी बातें लिखी हैं। तो उसको नाम लेकर के भी हम पुनः पुनः बार बार उसको स्मरण करते हैं, बहुमान से स्मरण करते हैं, ऐसा कहते हैं। त्रिलोक के नाथ जिसके वश हुए हैं, क्या है भीतर में जो सर्वज्ञ स्वरूप स्वभाव है, तीन लोक का नाथ है, वो इनके वश हुए हैं। इस पर से ये बात चली है अन्य मत में कि भगवान तो भक्त के वश होते हैं, भगवान है वो भक्त के वश होते, वो वहां से बात चली, क्योंकि खुद जो भगवान है ना वो दृष्टि के कब्जे में आ गया ना, तो बोले कि उसको वश कर लिया है उसको। हाँ वो उसकी भक्ति करती है तो वो भक्त कह दिया, पर्याय तो भजन करती है तो जिसका भजन करती है उसके वो भक्त है, और भगवान भक्त के वश होते हैं, वो वहां से चली है बात। फिर रूढ़ी के वश हो गई, सब बात रूढ़िगत हो गई, मूल में बात अलग है। त्रिलोक के नाथ जिसके वश हुए हैं, ऐसे होने पर भी वह ऐसी अटपटी दशा से रहते हैं कि जिसकी सामान्य मनुष्य को पहचान होना दुर्लभ होती है। अटपटी दशा मैंने क्या कि उनको रहना है तो अज्ञानियों के बीच में, तो अज्ञानी होकर के अज्ञानी जैसे ही रहते हैं, वो अलग ऐसे नहीं पड़ जाते कि नहीं मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, मैं इस तरह से ऐसा काम नहीं करूँगा, मैं ऐसा कपड़ा नहीं पहनूंगा, मैं ऐसा हूँ, मेरा तो अभी कपड़ा बदल जाना चाहिए, पहले मैं सेव करता था अभी सेव नहीं करूंगा, ये बात नहीं होती है। पहले मैं ऐसा कुर्ता नहीं पहनता था अभी ये बनूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये बात उसमें नहीं। क्योंकि दिखावा करने से तो वो आउट हो जाते हैं, दिखावा तो उसको करना नहीं है, अहंता करनी नहीं है, उसका कोई बात बाहर लानी नहीं है, तो अटपटी दशा से बरतते हैं। ही तो होता है, वो तो जिसको होता है उसको तो बाहर नहीं लाने से भी होता है, और बाहर लाने से अहित होने का प्रसंग भी बहुत होता है। कोई कहने से कोई काम किसी से होता है क्या? कोई मान लेते हैं क्या कि कहने से अब इसको मानो तो क्या ऐसे कोई मानते हैं क्या? नहीं माने। उनके समझ में आएगा गलत या सही दूसरी बात है, लेकिन समझ में आएगा वो मानेगा, अपनी अपनी समझ से मानेगा। वो गलत समझ भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। नहीं, उसमें क्या है कि बरतना पड़ता है, उदय तो उसका भी प्रारब्ध योग तो है, तो प्रारब्ध अनुकूल नहीं बरते तो क्या होगा? जो ज्ञान दशा है वो तो आत्माकार दशा है, और प्रारब्ध है वो अनात्माकार दशा है, तो ये तो छूटने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन तो भीतर में हुआ, आत्मा बिल्कुल पलट गया, सारा द्रव पलट गया, और बाहर का जो पूर्व कर्म है वो वैसा का वैसा चालू रह गया, उधर में कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ये मेरा धर्म है, ये मेरा स्वभाव है, जो मैंने ऊपर कहा है, आगे कहा है, और वही उपयोग रखना, उसकी ही सावधानी रखना, उपयोग रखना, सावधानी रखना, दरकार रखना, जागृत रहना, ये सब भाव उसमें आ जाते हैं कि हमको राग द्वेष से मुक्त होना है, हमको राग द्वेष नहीं बढ़ाना है, किसी हो सके उतना खत्म करना है, और उसके लिए हमारा जीवन है। हमको राग द्वेष बढ़ाना, संसार बढ़ाने के लिए हमारा जीवन नहीं। हाँ, वो आते ही नहीं बेचारे, वो बेचारे पैदा ही नहीं होते ना। आत्मा इतना ताकत वाला है कि उसकी भावना से वो दूर भगने लगते हैं। जैसे सिंह सोया हुआ है तो हजारे मच्छर बैठते हैं, हजारों मच्छर बैठ जाते हैं, तो करवट भी नींद में बदलता है ना तो भगने लग जाता है, नींद में भी करवट बदलता है। तो ये डाउन हो गया, डिसअपॉइंट हो गया, डिप्रेशन में आ गया, हाईली डिप्रेशन में आ गया कि मैं, मेरे से युद्ध नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं तो त्याग से मारा गात्रो ध्रुजे छे, गीता में आवाता है अर्जुन ना मोटे से श्लोक बोला कि मारा गात्रो ध्रुजे छे, गात्रो मतलब हाथ पग ध्रुजते हैं, कंपते हैं, मैं कैसे युद्ध करूंगा, ये तो मेरे तो हाथ पग कंपने लग गए। तो श्री कृष्ण कहते कि अरे क्या करता है तुम, क्या बोलता है तुम, तुम ऐसा करो, लड़ाई नहीं करना है, तुम अपना गांडीव धनुष को, धनुष का नाम था, गांडीव धनुष को उठाओ, उसकी दोरी को खींच करके उसमें से आवाज निकालो, उसको टंकार कहते हैं, धनुष टंकार, तेरे धनुष के टंकार से सेना भगने लग जाएगी कि अरे इतना कोई जबरदस्त आदमी है कि जिसके धनुष का टंकार भी हमको मारता है, तो इसके बाण से हमारी क्या हालत होगी। बाण तो हाथ में नहीं लिया, अभी तो दोरी खींची है। ऐसे सही आत्म भावना है, ये तो एक अनंत सामर्थ्य संपन्न जो अपना स्वरूप है उसकी दोरी खींचने की बात है, टंकार करने की बात है। तीव्र आत्म भावना में आओ, ये राग द्वेष पैदा ही नहीं होगा।
कुछ प्रकार के विकल्प जो है वो आते ही नहीं है, आने को बंद हो जाते हैं, जिसको अभाव कहते हैं। तो जो विकल्प नहीं है तो विकल्प के निमित्त से होने वाली बाह्य क्रिया भी वहां नहीं देखी जाएगी। जैसे हमें दारू पीने का विकल्प नहीं है तो दारू की कोई क्रिया हमारे से होगी नहीं, दारू पीने की होगी क्या, होती है कभी क्या? क्योंकि इस प्रकार का आर्य मनुष्य को विकल्प नहीं आता है, आर्यता भी होती है तो दारू मांस का विकल्प नहीं आता है। तो देखते तो हैं कि ये इसकी दुकान लगी है, मांस की दुकान लगी है, ये दारू की दुकान लगी है, कोई चखने का भी विकल्प आता है क्या? तो विकल्प ही नहीं आता है तो प्रक्रिया कहाँ से होगी, क्रिया होगी नहीं। ऐसे विकल्प के अभाव से जो क्रिया का अभाव है, उस प्रकार का जो बाहर का दिखाव है वो पंचम गुण स्थान में चालू होता है, चतुर्थ गुण स्थान में नहीं होता है। इसलिए इसका कोई नियम नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। सैद्धांतिक तौर से ये बात अगर सही समझ में नहीं आएगी तो हम सम्यक दृष्टि को अज्ञानी मानेंगे। क्यों? कि उसको ज्ञान हुआ है तो बाहर में क्यों इसका कोई परिणाम नहीं दिखता है? जब इसकी दशा बदल गई है तो दशा के अनुसार बाहर में कुछ होना ही चाहिए। ये हमारा पूर्वाग्रह होगा, मिथ्या आग्रह होगा। तुम ज्ञानी तो अज्ञानी मानेंगे, और कोई अज्ञानी त्यागी हो जाएगा तो हम ज्ञानी मानेंगे कि देखो उसने फेरफार कर दिया। पहले तो कोट पैंट पहनते थे, अभी तो धोती कुर्ता भी नहीं पहनते, अभी तो ओढ़ लेते हैं, कपड़ा सिलाते भी नहीं है, सिलाई वाला कपड़ा भी नहीं पहनता है, तुम उसको ज्ञानी मानेंगे? या तो नग्न हो जाएंगे, दीक्षा हो जाएंगे तो मुनि मानेंगे। ये गड़बड़ी दोनों तरफ से हो जाएगी। इसलिए सैद्धांतिक रूप से किस गुण स्थान में किस प्रकार का वैराग्य होता है, किस हद का वैराग्य होता है, बाहर में कितना आता है कितना नहीं आता है, वो समझ लेना चाहिए। चक्रवर्ती को हम ज्ञानी कैसे स्वीकारेंगे फिर? इसका तो कितनी संपत्ति है, कितना वैभव है, पौद्गलिक वैभव कितना है उसका, इसका स्वरूप क्यों क्यों दिखाया गया शास्त्र में? सम्यक दृष्टि को चक्रवर्ती के रूप में भी क्यों पुराणों में लिखा गया कि हमारे शांतिनाथ, कुंथुनाथ, हरनाथ चक्रवर्ती थे, फिर भी तीन ज्ञान के धनी थे। उसको सम्यक मतिश्रुत ज्ञान था, शायद सम्यक दर्शन लेकर के आए थे और चरम शरीर उसी भाव में निर्वाण में गए। मानेंगे नहीं? इसकी संपत्ति, इसकी बाह्य भौगोलिक वैभव उतना होता है तो उसको देखते हुए मानेंगे नहीं, ये बात हो जाएगी। इसलिए छेडाला में आता है कि लेशन संयम परसुर नाथ जजे हैं। किसको जजे हैं? किसको पूछते हैं कि वो तीर्थंकर है, उसका कोई संयम नहीं है। जन्म के काल में किसका संयम होता है? बच्चा को कोई संयम होता है क्या? संयम पालन का कोई विकल्प होता है बच्चों को? उसको तो बोलने को नहीं आता है, फिर भी उसको पूछते हैं, लेकर के ले जाते हैं उसको, फिर अभिषेक करने को ले जाते हैं कि नहीं, जन्माभिषेक होता है कि नहीं, माँ पूजा होती है, अभिषेक होता है, शो होता है। असंयमी है कि असंयमी है? असंयमी है, फिर पूजन करते हैं उसका भी। और कौन करते हैं? सम्यक दृष्टि लोग करते हैं। तो धर्म इंद्र तो एकावतारी है, दोनों इंद्र इंद्राणी दोनों सम्यक दृष्टि है, वो इसका पूजन करते हैं। सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि की पूजा करता है, देखो आता है कि नहीं आता है, ये होता है। हाँ, कौन सा संयम है, कौन सा त्याग है, कौन सा ज्ञान भी लोगों को नहीं दिखता है। बच्चे में क्या ज्ञान दिखेगा? लेकिन है ऐसा होने पर भी वह ऐसी, ये सब अटपटी दशा है। सिद्धांतिक तौर से ये बचपन होना, बालकपना होना, ये अटपटी दशा नहीं है क्या? एक सम्यक दृष्टि जीव, शायद सम्यक दृष्टि जीव एक दिन का बालक होता है, सारी दुनिया उसको देखती है कि एक दिन का बालक है, कौन उसको मानेगा कि ऐसा समर्थ है? वो भीतर में तीन लोग का नाथ को बस कर बैठा है, कौन मानेगा उसको? अटपटी दशा तो कई प्रकार की होती है, रोगिष्ट होते हैं, दुखी दरिद्र होते हैं, काणे कुबड़े होते हैं, कई प्रकार के उदय होते हैं, विभिन्न प्रकार के जितने भी उदय होते हैं चारों गति में, संगनी पंचेंद्रिय को सब सम्यक दृष्टि को हो सकता है। ऐसा नहीं कि पुण्य का ही उदय हो, सब ठीक हो, ऐसा कोई बात नहीं। ये सब अटपटी दशा ही है। और क्या है, ऐसी अटपटी सी दशा से रहता है कि जिसकी सामान्य मनुष्य को पहचान होना दुर्लभ है, ऐसे सत्पुरुष की हम पुनः पुनः स्तुति करते हैं। देखो, हम तो स्तुति करते हैं उसके, उसकी कीर्ति यश कीर्ति को गाते हैं, स्तुति करने का भाव गया है, हम तो स्तुति करते हैं उसके। सीधी बात है, तो आज 254 में कहा गया, मुमुक्षु के नेत्र महात्मा को पहचान लेते हैं, सामान्य मनुष्य को। तो आगे उसकी चर्चा चली है पत्र में 619 में, कि जघन्य कोटि के और मध्यम कोटि के मनुष्य नहीं पहचान सकते, मुमुक्ष नहीं पहचान सकते, उत्तम कोटि के जो मुमुक्ष है वही पहचान सकते हैं, ऐसा लिया है। हाँ, बराबर पहचान लेते हैं, फिर भी पहचान लेते हैं। सम्यक को दूसरा संकेत में आता है, ये पहला संकेत हुआ इस वक्त पहचाना, उस वक्त पहला संकेत हुआ, उसको दूसरा होगा आगे जा करके, वहां से सम्यक सम्मुख कहते हैं मुख्य रूप से। गौण रूप से उसको कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो तो फिर आगे बढ़ने वाला है, इसलिए सम्मुख है, आगे बढ़ेगा इसलिए उसको सम्मुख कह देने, तो कोई गौण रूप से कहने में कोई नुकसान नहीं है। एक समय भी सर्वथा असंगता से रहना त्रिलोक को वश करने की अपेक्षा भी विकट कार्य है। तीन लोक को वश करना वो आसान है, लेकिन एक समय भी द्रव्य भाव से असंग रह जाना वो इससे भी विकट है। अच्छा, जैसे स्वयंभू रमण को समुद्र को तैरना हो सकता है शायद, लेकिन वो समुद्र को तैरना चिरना नहीं हो सकता है, ऐसी बात है। ऐसी असंगता से जो त्रिकाल रहा है, उस सत्पुरुष के अंतकरण को देखकर हरम परम आश्चर्य पाकर नमन करते हैं, एक एक वचन में भक्ति करते जाते हैं सत्पुरुष के, कि ऐसी असंगता से जो त्रिकाल रहा है उस सत्पुरुष के अंतकरण, अंतकरण से वो भिन्न रहते हैं ना, इसलिए इनके अंतक प्रवृत्ति को देख करके हम आश्चर्य पाते हैं कि बाहर में कुछ अंदर में कुछ, लोग समझ ही नहीं सके ऐसी कोई बात है, तो आपको तो आश्चर्य होता है कैसे वो रह सकते हैं, कैसे रह सकते होंगे। लेकिन एक दफे स्वामित्व छूट जाता है तो फिर कभी स्वामित्व आ सकता नहीं है। जैसे नौकर को कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मेरी संपत्ति मेरी दुकान है, काम तो अपने पर करके करता है, बहुत लगाव से करता है, प्रामाणिकता से करता है, फिर भी उसको कभी भी ऐसा विकल्प नहीं आता है कि मेरा हो गया है, क्योंकि उसका ज्ञान साफ रूप रहता है। जैसे पड़ोस में कितना भी संबंध हो, इतना पड़ोस में कभी कभी संबंध होता है कि उसको आने जाने के लिए बोलना नहीं पड़ता है कि हम आए या नहीं आए, क्या हम आ सकते हैं, ऐसा नहीं बोलना पड़ता है, कभी भी आकर के बैठ सकता है। और बोलने वाला ऐसा भी कहता है, ये तो आपका ही घर समझो ना, हमारा घर नहीं है तो आपका ही समझो। लेकिन पड़ोसी कभी वो अपना मानेगा नहीं, कोई भी चीज कहीं भी पड़ी होगी उसको शंका नहीं होगी कि पड़ोसी आया है तो सावधान रहे, ये आपका ही घर है, समझो, कहेंगे आपका, लेकिन वो मानेगा नहीं, बरतेगा ऐसा ही जैसे अपने घर में बरतता है, फिर भी मानेगा। ये ज्ञान काम करता है, प्रवृत्ति से कोई इसका नाप नहीं निकल सकता। ऐसे सत्पुरुष के अंतकरण को देखकर हम परम आश्चर्य पाकर नमन करते हैं। हे परमात्मा, हम तो ऐसा ही मानते हैं कि इस काल में भी जीव का मोक्ष हो सकता है। आपने दिव्य ध्वनि में भले ही बोल दिया हो, लेकिन हमारी भावना जो है मोक्ष पाने की, उसको गिनती नहीं है। आपकी वाणी को भी हमारी भावना नहीं गिनती है। ठीक है, का पुरुषार्थ ऐसा था, जो पुरुषार्थ के साथ जो भावना होती है उसी को ही भावना कहते हैं, दूसरे को भावना नहीं कही जाती। पर वो भावना कभी ऐसी तीव्र हो जाती है, तीव्र हो जाती है, तो उनको लगता है कि मैं स्वरूपस्थ तो होता हूँ, हो सकता हूँ, होते जाता रहता हूँ। अब मुझे उसमें रह जाना, उसमें कौन सी मुझे आपत्ति है, कौन सी तकलीफ है, मैं क्यों नहीं हो पाऊंगा, हो जाऊंगा, बराबर हो जाऊंगा, हो सकता हूँ तो हो जाऊंगा मैं, तो क्यों मोक्ष नहीं हो सकता है। भगवान कैसे बोले ऐसी बात, हमारे परिणाम तो ना देता है उसका, हमारा पुरुषार्थ तो उसका ना देता है, कि भगवान ने ये बात कैसे बोली। देखो कितना पुरुषार्थ उछाला खाता है, जोर पकड़ता है कि हे परमात्मा, हम तो ऐसा ही मानते हैं कि इस काल में भी जीव का मोक्ष हो सकता है, हम तो मानते हैं। फिर भी जैन ग्रंथों में क्या जैन ग्रंथों की बात जैन ग्रंथ जाने, भगवान की वाणी भगवान भगवान जाने, हमको नहीं बैठती है, वो पुरुषार्थ ऐसा काम करता है। फिर भी जैन ग्रंथों में क्वचित प्रतिपादन हुआ है, जानते हैं कि तीर्थंकर की वाणी के अनुसार ये बात प्रतिपादन हुई है, जानते हैं। तद अनुसार इस काल में मोक्ष नहीं होता हो तो इस क्षेत्र